हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो है एक बाबा की, जिनका नाम है अब्दुल्ला। तो शुरू करते हैं। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका सारे धन का उत्तराधिकारी मैं बन पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम कर सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़कर मेहनत की और उससे बहुत सारा धनार्जन किया और 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। मैंने कुछ और ऊँट खरीदे और उनको साथ में लेकर किराए पर माल ढोने लगा। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लाद कर मैं बसरा ले गया। वह माल को जहाजों पर चढ़ाकर मैं अपना किराया लेकर अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस आने लगा। रास्ते में एक बड़ा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों को बांध दिया और उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फ़कीर भी मेरे पास आ गया। मैंने भोजन निकाला और उसे साथ में आने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूर पर एक ऐसी जगह है जहाँ असंख्य द्रव भरा हुआ है। तुम इस 80 ऊँटों को रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और यह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी होगा। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह न जाना कि वह इससे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ और तो मैं तुम्हें ऊँटों और रत्नादि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें उनमें से एक ऊँट दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता था कि बेकार ही एक ऊँट इसे देना पड़ेगा, कभी सोचता था कि क्या हुआ, मेरे पास बाकी के 79 ऊँट तो हैं। वह फ़कीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊँगा कि तुम खजाने से भरे अपने ऊँटों में से आधे मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है। मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों का धन ही मेरे लिए काफ़ी होगा और मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह धन काफ़ी होगा। हम दोनों एक ही अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ में तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुँचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फ़कीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ चलो। मैं ऊँटों को बिठा कर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फ़कीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा कर एक चकमक के पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर अपनी झोली में से सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक ज़बरदस्त बादल उठा और एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह फट गया। उसमें से एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहाँ हम थे वहाँ से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने के लिए एक गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकता था। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसके अंदर असीम द्रव्य भरा हुआ था। अशर्फियों के एक ढेर को देख कर मैं उस पर ऐसा झपटा जैसे शिकार पर शेर झपटे। मैंने ऊँटों की खुरजियों में अशर्फियाँ भरना शुरू किया। फ़कीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भरता। उसने मुझे भी अशर्फियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा ही करने लगा। हम लोग ने सारी खुरजियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि फ़कीर एक और कमरे में गया और मैं उसके साथ चल गया। उसने भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। फ़कीर ने एक सोने का संदूक खोला उसमें से एक लकड़ी की डिबिया निकाली और उसे खोल कर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख दी, फिर उससे आगे जलाकर उसमें सुगंध डाली और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल गायब हो गया और वह गुफा और टीला भी गायब हो गया जो उसने मंत्र बल से पैदा किया था। हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे थे। हमने सारे ऊँटों की खुरजियों से लदा और वादे के अनुसार मैंने आधे आधे ऊँट बाँट कर हम उस तंग दर्रे से निकले जहाँ से हम आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुँच कर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर जाने लगा और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला हूँगा कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे ही और दौड़कर फकीर को आवाज़ दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपकी तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई होगी। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके हिस्से के 10 ऊँट ले लूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का महत्व कितना होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा 10 ऊँट और ले जाओ। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हिला हुल्लत किए 10 ऊँट मुझे दे दिए और लालच ने मुझे मेरे मन को गर दबाया।